रेडियो जिंदगी 1550 सीएम या फिर 99.7 एफएम HD3 पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो लेके आए हैं AW लॉ शो, ब्रॉट टू यू बाय AW लॉ ग्रुप। AW लॉ ग्रुप की जो टीम हमारे साथ में जुड़ती है हफ्ते में दो दफा, वेंसडे की दोपहर को 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में और फ्राइडे को दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच। एंड वेन एवर दे कम ऑन एयर, वो पिछली बार उन्होंने डेट सेटलमेंट के बारे में बात की थी, कभी हम सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं इस शो पे, कभी एस्टेट प्लानिंग के बारे में। पूरा शो हम इस बार पे कवर करेंगे। आज एस्टेट प्लानिंग की बात करेंगे। लिसनर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, आप फोन कर सकते हैं, कॉल अस ऑन 5107701550। हमारे पास में अटर्नी इखलास हैं, आज 12:30 बजे तक होंगे। 5107701550, दैट इज द स्टूडियो नंबर। लेकिन अगर आप AW लॉ ग्रुप से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर है 5109368211, 5109368211। उनकी वेबसाइट है awlawgroup.com, दैट्स awlawgroup.com। एंड उनका ऑफिस है न्यूयॉर्क में, 37600 सेंट्रल कोर्ट, स्वीट 207, न्यूयॉर्क। तो चलिए अटर्नी इखलास से बात करते हैं, देखते हैं व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस टुडे। अटर्नी इखलास, वेलकम टू द शो, गुड आफ्टरनून।
थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स एज वेल।
सो अटर्नी क्लास, एस्टेट प्लानिंग के आप स्पेशलिस्ट हैं एंड यू नो हमने थोड़ी बहुत बात हमेशा की है बिट्स एंड पीसेस में इस बारे में, पर आज हम पूरा शो इसी पे अगर डेडिकेट कर रहे हैं, आई एम श्योर हम काफी, एटलीस्ट आई होप कि हम काफी कुछ कवर कर पाएंगे। और लिसनर्स को हम इनवाइट करते हैं कि एस्टेट प्लानिंग को लेकर अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर हमें फोन करें 5107701550 पर। सो अटर्नी क्लास, जब एस्टेट प्लानिंग की बात करते हैं तो अगर हम बेसिक से शुरू करें, व्हाट इज एस्टेट प्लानिंग, क्या फायदे, क्या Why should one have estate planning at all?
जी इरा, शुक्रिया। ये estate planning जो है ना काफी वाइड सब्जेक्ट है, और यानी बहुत से एरियाज लॉ में हैं जो आपको अफेक्ट नहीं करते जिंदगी में, पर estate planning एक ऐसा शोभा है, ऐसा एरिया है जो कि वो आपको जरूर सबको टच करता है, क्योंकि एवरीबडी हैज टू इवेंचुअली डाई एंड देन दे हैव टू पास ऑन देयर एसेट्स, सो इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स एवरीवन सूनर और लेटर। तो यहाँ इस कंट्री में और बहुत सी कंट्रीज में, और इस कंट्री में स्पेशली बहुत सारे लॉज जो हैं वो ऑन द बुक्स हैं कि किस तरह से कभी कोई किसी की डेथ हो तो किस तरह से उसके जो एसेट्स हैं उसको डिस्पोज किया जाए, और वो पूरा स्टेट प्लानिंग का बेसिकली शोभा है। एंड ऑल्सो स्टेट प्लानिंग ऑल्सो इन डेथ एंड ऑल्सो इनकैपेसिटेशन, अगर कोई इनकैपेसिटेट हो जाए तो उसके लिए उसके स्टेट के बारे में क्या किया जाए। तो ये जो है सब्जेक्ट काफी डीप सब्जेक्ट है और काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है इसको, और बहुत से लोगों को तो जाहरी बात इतने नहीं सोचते कि भाई जब मैं मेरी डेथ होगी तो क्या होगा, उस वक्त किस तरह से मेरे एसेट जो हैं वो मेरे बच्चों तक या किसी पेरेंट्स तक या किसी और के लिए जो हमने देने हैं तो कैसे जाएंगे। सो बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके बड़े जो लॉज हैं बड़े पेचीदा और क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हैं, एंड ऑफकोर्स पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड यू आर द वंस हु रियली हैव टू गो थ्रू ऑल द डिफिकल्टी इन ट्राइंग टू गेट दोज एसेट फ्रीड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज यू मे हैव विश्ड।
ओके, सो ऑफकोर्स यू नो वेन यू से कि बहुत ही पेचीदा मामला हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, what happens actually when somebody passes away, does not have estate planning, what happens to the whole property, does it not automatically go to the heirs या फिर survivors?
जी हाँ, ये काफी लोगों के मिसकंसेप्शन है कि भाई जो मेरे एसेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सब मेरे बीवी बच्चों को चले जाएंगे, दैट्स वॉट पीपल थिंक, एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। क्या होता है कि जब आपकी डेथ होती है तो उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं आपके वो बेसिकली फ्रीज हो जाते हैं, और आपको और आपके बेसिकली आपके हेयर्स को जाके या जो भी आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, दैट कुड बी एक्चुअली ए क्रेडिटर हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी, दे हैव टू अप्रोच द कोर्ट एंड स्टार्ट ए प्रोबेट प्रोसेस। उस प्रोसेस में फिर वो जो है ना कोर्ट डिसाइड करता है बेसिकली पूरे प्रोसेस के बाद कि प्रॉपर्टी पहले कितनी है, किसकी है और फिर किसको जानी चाहिए और कितना हिस्सा किसको मिलना चाहिए. सो दैट्स व्हाट द होल प्रोसेस इज. एंड टिल दैट टाइम जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ऑफकोर्स कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा कि किसकी प्रॉपर्टी है देन दे कैनॉट बेसिकली यूज दैट प्रॉपर्टी. तो ये और जाहिर बात है आप यू कैन इमेजिन एनी कोर्ट प्रोसेस कैन नॉट बी अ क्विक एंड फास्ट प्रोसेस राइट. कोर्ट्स में तो कोई भी चीज जब जाती है तो इट टेक्स प्रीटी मच ईयर्स टू डू दैट. एंड ऑफकोर्स बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, फिर लॉयर्स भी होंगे, अप्रेजर्स भी होंगे और इस तरह से. ना कोर्ट ने कुछ उसमें से आसानी की है, व्हेन यूर प्रॉपर्टी इज लेस देन 150,000 देन देयर इज अ क्विकर प्रोसेस. बट ऑफकोर्स नॉट एवरी वन कैन अवेल दैट प्रोसेस बिकॉज यहाँ तो घरों की वैल्यूज हैं और जो एसेट्स हैं लोगों के दे आर यूजली लॉट मोर देन दैट. सो यू हैव टू प्रीटी मच गो थ्रू द होल प्रोसेस एंड दैट कैन टेक समटाइम्स ओवर अ ईयर.
इज दैट व्हाट यू कॉल प्रोबेट?
या दैट्स व्हाट्स कॉल्ड प्रोबेट. बेसिकली प्रोबेट इज द कोर्ट प्रोसीजर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ द डेसिडेंट.
ऑल राइट. सो जब आप बोलते हैं कि प्रोबेट है ये, तो प्रोबेट प्रॉपर्टी वही होती है जो ऐसे अभी कॉन्फ्लिक्ट में है एंड कोर्ट इज स्टिल डिसाइडिंग अबाउट इट.
जी हाँ, प्रोबेट प्रॉपर्टी वो सब प्रॉपर्टी है जो कि कोर्ट डिसाइड करता है कि कहाँ और किसको जानी चाहिए. एंड प्रीटी मच ऑल योर एसेट्स देर आर नॉट पार्ट ऑफ ए ट्रस्ट. सो अनलेस यू हैव क्रिएटेड ए ट्रस्ट बिफोर, प्रीटी मच ऑल द प्रॉपर्टी विल गो टू द कोर्ट and court will decide what to do with that property. Because property pe aapko sari baat estate taxes bhi honge, uske creditors ko bhi pay off karna padega, phir uske expenses bhi pay off karne padenge. So all that is called probate property that has to go to the court and court decides what needs to be done.
Okay. Listeners, agar aapko main yaad dila do, if you don't have any, if you have any questions that you, you know, you're looking for answers about estate planning, kuch bhi aap poochna chahte hain, aap zarur hame phone kare 510-770-1550 par. That's 510-770-1550. Otherwise, you can also get in touch with AW Law Group on their office number 510-936-8211. 510-936-8211. The website is awlawgroup.com. तो अटोर्नी क्लास अगर आगे बढ़े तो यू नो ये लिविंग ट्रस्ट, हेल्थ केयर, एस्टेट प्लानिंग में आपने मुझे याद है शुरू में मेंशन किया था कि बड़ी सारी चीजें और होती हैं. इट्स नॉट जस्ट वन डॉक्यूमेंट कि ठीक है ये एस्टेट प्लानिंग है जिसमें आपने खाली लिख दिया कि ये इसको जाएगा, फलाना किसी और को जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स. आई अंडरस्टैंड इट्स अ होल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे प्लीज.
बिल्कुल इरा, मोस्ट पीपल जो है वो समझते हैं कि दे थिंक दैट इफ दे हैव ए विल दैट शुड सफाइस for everything. So they just have to create a will and they, you know, go online and check. Log advertise karte hain, hey, make your will for $100, $200 or something like that. Dekhen, estate planning mein there are multiple ways of transferring your property to your heirs, and will is one of the many documents that's required. Now, will ke kuch fayde bhi hain, kuch nuksanat bhi hain. When you create a will, basically will is just saying what you wish to be done to your property, but it does not avoid the probate process. So if you have a will, if you have a valid will, somebody can take that, the executor basically take that will, goes to the court and probates that court. The only difference that the will does is at the end of the probate process, how your property get distributed, instead of applying the default California laws, you apply what's in the will, the wishes of the person in the will. But it does not at all avoid the probate process.
All right.
So, uske alawa jo hai, there is something, a trust. So, if you want to avoid the whole probate process and the court process, what people usually do is put their property in what's called a living trust. लिविंग ट्रस्ट ये होता है कि आपने अपनी एक थिंक ऑफ इट लाइक ए बॉक्स, यू क्रिएट अ लिविंग ट्रस्ट एंड पुट ऑल योर प्रॉपर्टी इन देयर एंड देन यू असाइन योर सेल्फ एज द ट्रस्टी ऑफ दैट ट्रस्ट. जब तक आप जिंदा हैं यू कैन टेक केयर ऑफ दैट ट्रस्ट एंड वट एवर यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विद दैट प्रॉपर्टी दैट्स इन द ट्रस्ट. But of course, then after that, you have a successor trustee after you die. And that job of the successor trustee is to take your property and distribute it according to your wishes in the trust. The successor trustee does not have to go to the court. And so it avoids that whole court process, which is lengthy and expensive. It can be done privately.
So how different is it? Agar aap ek trustee assign karte hain, jo make sure kare ki sab ek dusre ko gaya, ya fir estate planning mein aapne sirf lik diya ki ye jana chahiye, ja to wo waise bhi raha hai. So why, how is it different?
Yes, the law actually, because the law of the state is such that it allows for a trust to an instrument called a trust, where a trustee is assigned, and that trustee has the lawful authority to transfer the assets privately without having to go to the court. And that's what the advantage in law, and law holds the trustee to fiduciary standard, where the trustee can be sued for not following and obeying what's in the trust document.
Okay.
So jo hai na, the law of the California actually allows for this kind of transfer to happen in a private setting without having to go to the court through the court system.
I believe you also mentioned somewhere, aapne beech mein mention kiya tha ki living trust karke kuch.
Ji haan. So ye jo trust ki,
Achha, Nicholas, hold that thought. Hum us bare mein wapas aake baat karte. We have a caller.
Sure.
Let's see what they'd like to ask you. Hello, you are on air with attorney Nicholas.
Hey, good afternoon, guys. I have a question. How much is going to cost if you're going to go for the estate planning?
Sorry, I didn't hear that.
वो पूछे कि cost कितनी पड़ती है अगर कराते हैं तो.
जी, देखें cost का ऐसा है कि पूरा जो package है, you'll find the cost in the market anywhere. People are doing it from about $1,000 for the whole package to $3,500 to $4,000, right? And it's a range, and you'll find attorneys who'd be doing this, you know, on the very low end to the very high end. There are a lot of factors that affect the cost, right? So not everybody has a cookie cutter kind of estate plan. Every person may have their own needs and own things that you have to watch out for. And then of course also depends on the experience of the attorneys that are involved. Ye legal documents hote hain, and these legal documents are taken very seriously by the state and by the law. So issue ye ke agar aapne किसी से करवा लिया जो यू हैड द पेपर्स मेड फ्रॉम एन अटर्नी हु रियली डिडंट नो व्हाट दे वर डूइंग, ऑफ कोर्स मे नॉट इम्पैक्ट यू व्हाइल यू आर अलाइव और मे, बट इट विल सर्टेनली इम्पैक्ट द पीपल हु सर्वाइव यू. And that's very important to know who you're going with, because the executor or the trustee, success, they are held to a fiduciary standard, which is a very, very high standard. So if they do anything wrong or not according to the wishes of the person in the document, even if it brings about a bad or a wrong result, but it's there in the document, they have to be they have to obey that basically the wishes that are in the trust or the will document.
Yeah, another question is that, agar, by the way, because estate planning gonna change every year, you know, you buy, selling, you making new asset. Agar next year aapne phir dobara kuch naya buy kar liya aur usme se kuch bech diya, usko change karwana hua, to again you have to pay everything, or you just add one paper and that's it, that'd be it?
Right. That's a very good question. No, you don't have to. The way the estate planning documents are written, that they are capable of taking in changes without having to change the documents themselves. So, aap jo hai, koi bhi property buy karein, sell karein, nothing has to change. Agar you have more kids, typically nothing has to change. If for God forbid, if a kid dies or something change like that happens, you don't have to change much. The only time I can see where major change may have to happen, if you got divorced and you have a second marriage, and if you have children from the second marriage and all that. So those are the times where you really have to change it. Otherwise, the way the documents are created, you can easily buy, sell property, and you know, do all that without much issue or having to redo the papers.
All right, thank you so much.
Thank you very much for calling in. That was a great question, क्योंकि life में इतनी सारी चीजें change होती रहती हैं, तो क्या करेंगे उसका बार-बार?
That's a very common question. People think you have to pay like $1,000 every year. No, it's usually, I mean, if you are a stable life and all that, you may only have to pay it once and you can be secure, all that. जो हमारे बेसिकली दो ये तो नॉर्मल इश्यूज हैं, लेकिन जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं और जो जो इंटरनेशनल लोग हैं उनके लिए थोड़े इश्यूज जो हैं वो दे आर लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन समबडी हु जस्ट लिव्ड हेयर एंड यू नो एवरीथिंग ऑफ देयर इन दिस कंट्री. अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, सो a will that's made or a trust or a estate plan that's made in the US may not help you too much in what's in India, for example.
Mm-hmm.
If your property is there, is not. Because jo estate planning ka jo law hai, wo local law hai. Aur jahan property aapki reside karti hai, wo property jo hai, wahan ke law ke hisaab se distribute hoti hai. So even if you have a estate plan, for example, in California, you may have issues distributing your property in India according to that plan. So you may have to consult with an attorney who can deal with that and who may have people in India who can help you with distributing a property there. India ke jo wills ke law hain wo thode different hain than California. So you may have to have multiple wills or multiple plans, but you have to be really careful that they don't conflict with each other and then they don't ek jo hai dusre ko nullify na kar de.
Ji. The attorney class, we have one more caller.
Sure.
Hello, you're on air with the attorney class.
Hi, good afternoon.
Good afternoon.
Mera sawal hai, when people buy properties, actually I think it's in my, humare kagaj patar mein aise bana hua hai ki, if I'm not there, when I'm, no longer, so my property goes to my kids, jo hai ek, do, teen. So, kya wo nahi kaam karegi?
देखिए प्रॉपर्टीज को जो अपने हेयर्स पे यानी आपकी डेथ के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के कई तरीके हैं. सो देयर इज मोर देन वन वे ऑफ डूइंग इट. ट्रस्ट एंड विल इज ओनली वन ऑफ द वे. द अदर वे यू कैन डू इट इज यू कैन हैव अ जॉइंट. इट डिपेंड्स ऑन हाउ द टाइटल इज टू द प्रॉपर्टी. लेट्स से इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी विद अ जॉइंट टाइटल विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, देन द सर्वाइवर्स टेक द प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली. Now that's one way of doing it. Let's say I'm an adult. I have children. Now, of course, agar minor children hai, you never want to put minor children on the as the recipient of anything, even life insurance and all that, because it creates a lot of problems for minor children. It's really hard to get that money out. But let's say if you have adult children, you put their name. So that's one way of doing it. But of course, then they also become owner in that property and then they have the same rights. So if you have a falling out with your kids, now they also have the right to the house and they can also do things. They can try to sell it and do those kind of things. But the other thing, there is a tax implication. So if you pass on your property by making them a joint owner in that property, they will not get step-up basis when you die. Step-up basis ye hai ki jaise aapne 1 lakh ki property khareedi, at your death it was 3 lakh ki ho gayi. So there now cost will be considered. If aapne trust ke through diyo ya estate planning ke through diyo, to uski jo cost hai 3 lakh consider hogi. लेकिन अगर आपने उनको जॉइंट बना लिया है तो उनको 1 लाख और उनको जो प्रॉफिट है जो उस 1 लाख से कंसिडर होगा. लेट्स से दे सेल द प्रॉपर्टी फॉर 500,000, देन 400,000 पे उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा इफ यू डिड दैट जॉइंट वे. इफ यू डिड थ्रू द स्टेट प्लानिंग वे, यू दे ओनली हैव टू गिव द टैक्स ऑन द 200,000 देना पड़ेगा. सो दे आर टैक्स इम्प्लीकेशंस टू दैट वे ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी. एंड ऑफकोर्स देयर इज अ कंट्रोल इशू. So if you're not comfortable with your kids taking control of the house, then that's also not the best way to do it.
So you're saying the best way to do it is, what's it called? Just do the paperwork and don't go through probate and things like that, right?
Yeah, the best way to do it, of course, is a trust would be. Then you avoid the probate, you get the step-up basis for the property for your children, and then you don't prematurely give them control over the property. And of course, agar aapke zyada bachchon kisi logon ke 3-4 hote hain, then you have to put them all in on the deed and things like that. That's one issue. And the other issue is, of course, if your property is aapne mortgage, it's not outrightly yours and you have a lien on it with the mortgage company and all that, they may not allow you to put so many people on the deed. So that may be an issue as well.
That makes sense. Thank you. Thank you, sir.
जी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन अटर्नी क्लास. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट एस्टेट प्लानिंग या फिर हमारे कॉलर्स के अगर कोई सवाल हो तो उनके जवाब हम देंगे. लिसनर्स एनी क्वेश्चंस यू हैव कीप देम रेडी. 5107701550 इज द नंबर जहां पे आप फोन करके बात कर सकते हैं. वी हैव 5 मोर मिनट्स जिसमें से करीब एक आध मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं. वेलकम बैक एवरीवन. वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM HD3. मैं हूं ईरा. शो चल रहा है AW लॉ शो ब्रॉट यू बाय AW लॉ ग्रुप. वी हैव अटर्नी इखलास इन द स्टूडियो एंड ही इज टॉकिंग अबाउट एस्टेट प्लानिंग. अटर्नी इखलास, इस ब्रेक में जाने से पहले हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे. तो रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट या फिर जो नॉन लिविंग ट्रस्ट वगैरह होते हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे. व्हाट इज इट
रिवोकेबल लिविंग?
आपका माइक.
जो रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट होता है वो रिवोकेबल इसलिए कहलाया जाता है कि आप जब तक तहयात हैं, एज लॉन्ग एज यूर लिविंग, यू कैन रिवोक इट एनी टाइम यू एंड से ओके यू नो व्हाट, आई चेंज माय माइंड, आई डोंट वांट दिस ट्रस्ट एनीमोर. यू कैन टेयर अप द ट्रस्ट एंड चेंज द प्रॉपर्टी बैक टू द नेम दैट यू हैड ओरिजिनली और गिव इट टू एनीबडी एल्स, राइट? सो एंड यू कैन ऑल्सो मेक एनी मॉडिफिकेशन सो यू कंटिन्यू टू ट्रीट योर प्रॉपर्टी लाइक यू ओन इट. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिवोकेबल लिविंग trust, because
as long
revocable,
as you're living.
Yes, that's a revocable, because you can revoke it, and living means it's modifiable at any time that you want. So it provides great flexibility.
Okay.
So ek question log mujhse poochte hain, I mean I don't know about too, I'm not expert in India law. Jaise logo ki property jo hai India mein hoti hai, when they want to create a will here, for example. So one interesting thing in Indian law I found out that you can't will away ancestor property. यानी जो प्रॉपर्टी आपने अक्वायर की है, यू कैन गिव दैट अवे, बट इफ यू गॉट इट फ्रॉम योर एनसेस्टर्स यू कैन नॉट विल दैट अवे, एंड दैट हैज अ डिफरेंट लॉ अप्लाइड टू इट. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड सो दैट्स वाई यू हैव टू बी केयरफुल वॉट विल यू मेक ओवर हेयर एंड हाउ यू हैव अ प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड हाउ यू वांट टू डिस्पोज ऑफ इट, बिकॉज इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉज के अपने अलग अलग हैं, सबकी जो है ना अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं ऑन दैट. सो यू हैव टू बी मेक ए प्लान दैट्स वर्केबल हेयर एंड ओवर देयर एंड हैज काउंटर पार्ट्स टू इट. सो दैट्स वन कॉम्प्लिकेशन दैट हैपन्स.
Right.
The other thing is a lot of Indian folks who are here or Pakistani folks, their spouses are non-citizen.
Mm-hmm.
Non-citizen creates a lot of complication. Even if they are green card holder and a permanent resident here, there still creates a lot of issues that they have to watch out for when doing a state plan. Because the exemption jo hoti hai state ki tax ki exemption is not, does not apply to non-citizen.
Okay.
So they have to be careful, because agar aapki death or aapke spouse jo non-citizen hai, they may end up paying a lot of tax on that thing. So you have to be really careful with
so
that.
So you have to be very careful, okay.
Aur teesra ye ke bahut se log H1B visa pe hain jo ke non-resident visa pe hain. To kya hota hai ki agar unki death hui, hamare paas case aaya to unki death hui, to they, now the spouse has to leave within a month or two.
Mm-hmm.
Now all their assets are frozen. So they cannot deal with this and leave at the same time.
So how do they do it?
So how they do it, if you make your the spouse executor on your will or a trust, then they can apply for business visa. And then they can stay here a little more to take care of that property. Otherwise, they'll have to leave within 30 days or 60 days, something like that. And they may not be able to get everything
of
done.
Course.
So that's really, really important for people who are non-resident here in the U.S.
G. Attorney class, our show aaj ka yahi, it is coming to an end, but it was great information. Thank you very much. We'll see you
most
again
welcome.
On Wednesday.
All right. See you then.
Thank you.
You so much.
Thank you very much. And thank you, listeners, for tuning in. Aap sunte rahiye Radio Zindagi. Jiye Jao.